Om Namah Shivaya. Dear listeners of Shaivam.org, the next program is Spiritual Discourse. In this, you are about to listen Shvetashvatara Upanishad, presented by Swami Sri Umeshanandaji Maharaj. Thank you. Om Namah Shivaya.
Pandrava Mantra Charana. Yadatma Tattvena Tu Brahma Tattvam. दीपोपमेनेह युक्त प्रपश्ये अजम् ध्रुवम् सर्वतत्त्वैर्विशुद्धम् ज्ञात्वा देवम् मुच्यते सर्वपाशैः ये प्रसंग चला श्वेताश्वतर उपनिषद के दूसरा अध्याय का पंद्रहवा मंत्र। इस मंत्र में क्या बतलाया जा रहा है, क्या लाए तत्वज्ञ पुरुष किस रूप में रहते हैं, तत्वज्ञान कैसे होता है, तत्वज्ञान का साधन बतला। यद आत्मा तत्वेन तो ब्रह्म तत्वम दीप उपमेनेह युक्त प्रपश्येत। आत्मा तत्वेन ब्रह्म तत्वम यदा इह युक्त प्रपश्येत यानी करना, तदा अजम ध्रुवम सर्वतत्वैर्विशुद्धम् देवम् ज्ञात्वा सर्वपाशैः मुच्यते। अन्य बात आवे, यहां ज्यादा शब्द और यह शब्द दोनों अन्य करना। ज्यादा ज्यादा कहां मिला? आत्मतत्व से पहले ज्यादा शब्द है। यदा एक कालवासी है, कालवासी यदा माने जिस समय, जब यह मानी अस्मिन शरीरे अस्मिन काले, ये कालवासी है, ये स्थानवासी है। जिस समय में और यह माने यह शरीर रहते रहते तुमने आत्मतत्व के द्वारा ब्रह्म तत्व को जाना। आत्मतत्वेन ब्रह्म तत्वम अनुभव कैसे जाना, कैसे आत्मतत्व ब्रह्म तत्व पर दीप उपमेन दिया के सदृश, दीपक के सदृश। तो जाना तो ठीक है, जानने का फल क्या है? तो कहते जानने का फल सर्व पाप सर्व पाश ही विमुच्यते है, मुच्यते है, समस्त पापों से मुक्त हो जाता। वो ब्रह्म तत्व कैसा है, इनका विशेषण है अजम ध्रुवम सर्वतत्व विशुद्धम देवम। अजन्मा है, अन्य बात ध्रुव माने निश्चल है, शाश्वत सनातन है। ध्रुवम सर्व तत्व विशुद्धम, समस्त तत्वों से वो शुद्ध है। और कैसा है देवम, दिव्य दिव्य देव माने प्रकाश, स्वयं प्रकाश। इस आत्मा को जान करके समस्त पाश माने बंधन से मुक्त हो जाओगे। अरे बात पास पास करके बंधन को, ये बात आपको बता रहे हैं। आप विषय आपको बात आपको जानना यह है कि श्रुति ने यह क्यों कहा, यह मिला आपको दीप उपमेन यह माने अस्मिन एव जन्मने अस्मिन एव काले ये जन्म में ही नहीं, इसी समय में अभी तत्सन आत्मतत्व को आपको जानने का निर्देश दे रहे हैं, जानने के लिए। ऐसा यहाँ काल प्रतीक्षा नहीं, देश प्रतीक्षा नहीं, वस्तु की प्रतीक्षा नहीं, अमुक समय में, अमुक देश में, अमुक काल में, अमुक जगह में हम आत्मतत्व को जानेंगे, ऐसा यह निर्देश नहीं दे रहा है, याद रखना। तत्कालिक तत्काल उस घर आने बात अब यह कब, जब तुम्हारा संसार से वैराग्य हो जाए, जदहर एव विरजेत तदहर एव प्रव्रजेत, जिस समय तुमको संसार से वैराग्य हो गया उस समय में ही तुम सब विषयों से अनारक्त होकर के, सब विषयों को त्याग करके अनिवार्य तुरंत अनिवार्य संन्यास आश्रम में चले जाना हो। इसी का भाष्य चल रहा था, यदा दश्याम अवस्थायाम, अच्छा कर लिया है, यदा माने दश्याम अवस्थायाम, अवस्था कहते अन्य बात अवस्था, जिस अवस्था में अन्य बात अभी क्या बचपन में है कि जवानी में है कि बुढ़ापा में है, किस अवस्था में, ये देह एक काल अवस्था है, काल की बात है। तो मुक्ति के लिए काल की प्रतीक्षा करने की जरूरत नहीं है, कहते हैं मुक्ति अमुक समय में होगी, अमुक काल में होगा, अमुक देश में होगा, ऐसा नहीं, आने पर अमुक स्थान में होगा, ऐसा नहीं। उसमें तो लिखता है सोपस गृह मंदिरे नदी नदी पुलिने, क्या तुम नदी के किनारे हो, जैसे देखो पाणिनि ऋषि का जो है ना, पाणिनि ऋषि व्याकरण के जो शासक, व्याकरण लिखने वाला जो पाणिनि ऋषि, उसका मृत्यु कैसे हो गई, सिंह 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 खा लिया, तो मुक्ति हुई कि नहीं। तो ये मुक्ति का मतलब है जिस काल में जिस अवस्था में तुमको बोध हो गया कि मैं ब्रह्म हूं, उसी समय तुम मुक्त हो गए, उसके बाद में वो चिंता करने की जरूरत नहीं, शरीर है कि नहीं है, रहे कि नहीं रहे, शरीर की अवस्था है, हम क्या चिंतन करके नहीं कर रहे, ऐसा नहीं होता। ज्ञान समकाल एवं मुक्ति ही, ज्ञान के समकाल में ही मुक्ति हो जाती है। मुक्ति के लिए देश काल वस्तु की प्रतीक्षा करने की आवश्यकता नहीं है। मीमांसा लेखने वाला जमीनी को हाथी ने मार दिया, इतना बड़े विद्वान पूर्व मीमांसा को लेखना जमीनी आचार्य व्यास जी का शिष्य है, छंद शास्त्र को लेखने वाले जो है ना पिंगला, उसको सब मगर ने खा गया। तो वहां विचार यह है कि ये जो अवस्था में इनका शरीर नाश हुआ तो इनकी मुक्ति हुई कि नहीं, तो मुक्ति तो उस समय उनको हो गया था जिस समय ये आपने को जान लिया था, है नहीं बात। बोल रहे ना अमुक व्यक्ति अमुक जगह में मरा, अमुक व्यक्ति अमुक जगह अमुक से मरा, अमुक व्यक्ति अमुक से मरा, अपा मृत्यु हुआ फलाना हुआ, ऐसा मृत्यु नहीं है इनका, है नहीं बात। अपा मृत्यु किसकी होती है, शरीर का होता तो होगा ना, तो आपने तो शरीर है नहीं, जिस समय ज्ञान हुआ उस समय शरीर को त्याग दिया, जैसे अंतर्जामी ब्राह्मण में छांदोग्य उपनिषद में आता है, आत्मा इस शरीर में रहता हुआ भी शरीर के साथ उसका कोई संबंध नहीं है, संबंध नहीं है, शरीर को सत्ता देता है, इंद्रियों को सत्ता देता है, सब कुछ करता है, तो सत्ता देने पर भी शरीर के साथ उसका कोई संबंध नहीं है, आनी बात, जब संबंध नहीं है तो शरीर के दोष गुण से उसका क्या संबंध होगा? जब संबंध नहीं है तो शरीर के दोष गुण उस पर आरोपित कैसे होगा? आरोपित तो तभी होता है जब अज्ञान है अविद्या है, तब आरोपित करते हैं। जो अज्ञान निवृत्त हो गया तो आरोप कौन करेगा? आरोप करने के लिए अज्ञान चाहिए कि नहीं? अज्ञान के सिवा है आरोप नहीं होता है। मैं शरीर हूँ, मेरा शरीर है, मैं करता हूँ, भोगता हूँ, सुखी हूँ, दुखी हूँ, हाँ मैं संसारी हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ, मैं क्षत्रिय हूँ, मैं वैश्य हूँ, मैं शूद्र हूँ, हाँ मैं रोगी हूँ कि स्वस्थ हूँ, ये सब जो मैं करके जो आरोप करते हैं तो आरोप करने के लिए क्या चाहिए? अज्ञान चाहिए। अज्ञान के वैसे आरोप करोगे कैसे? अविद्या है ना, अविद्या है तो देहादि में आत्मभाव होता है। देहादि में आत्मभाव के लिए अविद्या चाहिए। जैसे रस्सी में सर्प के आरोप करने के लिए अंधकार आदि चाहिए, रस्सी विषयक अज्ञान चाहिए। शुक्ति में चांदी का आरोप करने के लिए शुक्ति विषयक अज्ञान चाहिए। तावत सत्यम जगत भाति शुक्ति का रजतम जथा, कई जगत कब तक भासता है? कई जैसे शुक्ति में चांदी कब तक भासता है? तब तक भासता है जब तक शुक्ति का ज्ञान नहीं है। जब तक शुक्ति का ज्ञान नहीं है तब तक शुक्ति को हम चांदी समझते हैं, रस्सी को सर्प समझते हैं, मरुभूमि को जल समझते हैं, आकाश को नीला समझते हैं, शरीर को आत्मा समझते हैं। शरीर को आत्मा कब समझेंगे? शरीर को आत्मा तब समझेंगे जब तक अपने स्वरूप का कि ना हम ब्रह्मास्त्र का ज्ञान नहीं होता है। मैं ब्रह्म हूँ, ब्रह्माकार वृत्ति जब तक नहीं बनेगी, जब तक ब्रह्म का ज्ञान नहीं होगा और तब तक हम शरीर को आत्मा होंगे। आनी बात, आत्मा अज्ञान जगत भाति, आनी बात, आत्मा के अज्ञान से जगत देखता है और आत्मा के ज्ञान से बाधित हो जाता है। सुप्तिर अज्ञानात अहिर भाति, सुप्ति के अज्ञान से सर्प के भास होता है। अहि माने सर्प, सुप्तिर अज्ञानात अहिर भाति, तज्ज्ञान न भासते। सुप्ति के अज्ञान से समझेंगे नहीं चांदी भासता है, रस्सी के अज्ञान से सर्प भासता है। अनि बात, रस्सी के ज्ञान होने से सर्प नहीं भासता है, सुप्ति के ज्ञान होने से चांदी नहीं भासता है। जैसे रात्रि के सपन, रात्रि आप सो गए, निद्रा रूपी दोष आया, तो निद्रा रूपी दोष से आपने स्वप्न देखा, वो स्वप्न तब तक रहा जब तक जागा नहीं। आ स्वप्न का दृश्य स्वप्न काल में सत्य था या नहीं? वो स्वप्न का दृश्य स्वप्न काल में सुख भी दिया, दुख भी दिया, हर्ष भी दिया, विषाद भी दिया, भय भी दिया, सब कुछ दिया स्वप्न में। अहम सुखी अहम दुखी, स्वप्न में जब किसी का पुत्र उत्पन्न होता है सुख मिलता है, किसी को धन नाश होता है दुख होता है, कोई मर जाते है तो शोक होता है, स्वप्न में शोक भी होता है, हर्ष भी होता है, विषाद भी होता है, सुख भी होता है, दुख होता है, ये सब स्वप्न काल में है। परंतु ये सब तावत सत्यम स्वप्न भाते ही, स्वप्न तब तक सत्य भासता है जब तक प्रबोध है, जब तक जागा नहीं। और जागने के बाद में हम क्या बोलते हैं? स्वप्न था। तो स्वप्न पदार्थ कैसा है? तो मिथ्या है। संसार स्वप्न तुल्योयम राग द्वेषादि संकुल, स्वकाले सत्यवत भाति प्रबोधे सति असत भवेत। याद रखना, संसार स्वप्न सदृश है। यहां उपमा दिया ना दीपक का, तो संसार स्वप्न तुल्य अयम, अयम संसार स्वप्न तुल्य, स्वप्न सदृश है। स्वप्न की दृश्य जागृत तुल्य, जागृत की दृश्य स्वप्न सदृश। आप अन्योन्य आश्रय जगत की मिथ्यात्व सिद्ध करने के लिए आपको स्वप्न समझना पड़ेगा। स्वप्न का दृश्य मिथ्या सिद्ध करने के लिए जागना पड़ेगा। जागे बिना स्वप्न का पदार्थ मिथ्या नहीं होगा, याद रखना, समझे। जाग जाओगे तो स्वप्न का दृश्य मिथ्या होगा, तब आपको दुख नहीं होगा। ऐसे आप जिसको जागृत अवस्था कह रहे हो, ये पदार्थ भी मिथ्या है, पर मिथ्या होता हुआ अभी ये हमको सच्चा लगता है, सत्य लगता है, सत्य मानता है, दिखता है, परंतु ये सत्य लगते हैं। इसको मिथ्या हम कब कहेंगे, कब मिथ्या सिद्ध होगा? जागने पर। या निशा सर्वभूतानाम तस्याम जागृति संयमी जिस्याम जागृति भूतानि सा निशा पश्यतमो ने, गीता के दूसरा अध्याय में देख लेना। जब आप जागेंगे तब ये जागृत के विषय, जागृत का पदार्थ सब मिथ्या होगा। जागेंगे तब तो जागना क्या है? जानिह जीव तब ही जग जागा, जब ही उपजे विषय विरागा। तुलसीदास जी ने कहा, हे श्रोताओं रामायण सुनो, रामायण सुनो, सुनो सुनो, जाग करके सुनो। तो किसी ने कहा, महाराज जाग करके तो सुन रहे, सो करके थोड़े सुन रहे, सुनता रहे कि नहीं? बोले जानते हो जागना किसको कहते? जब उपजे विषय विरागा, जान ही तब जब जान ही तब जगह जागा, जब उपजे विषय विरागा। जब तुम्हारे विषय में वैराग्य पैदा हुआ है तो समझना तुम जाग रहे हो। तो वैराग्य पैदा कब होगा? जब विवेक होगा। विवेक की पहले वैराग्य नहीं होता है, याद रखना, साधना परंपरा का। विवेक होगा क्यों? तुम किसी वस्तु को त्यागने जाओगे अथवा किसी को पकड़ने जाओगे, किसी के पास जाओगे, जब उसका धर्म उसका स्वभाव जानोगे तब ना। अब राम और कृष्ण के विषय में इतना प्रशंसा, इतना प्रशंसा हमारे शास्त्रों में है, अरे बात विपद भंजन मधुसूदन फलाना ढमका, ठीक है, पर ये सुनने के बाद में आपको उनके प्रति रुचि हुई है, श्रद्धा हुई है, भगवान के पास जाने से दुख का नाश होगा, अविद्या के नाश होगी, अन्य बात भगवान हमारा कामना मनोकामना पूर्ण करेगा सब, आगे नहीं। तो उनका गुण जानते हो, ऐश्वर्य जानते हो, सुन 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 करके तुम कृष्ण को तो नहीं देखा, राम को भी नहीं देखा, फिर भी उनके प्रति क्यों इतना श्रद्धा हुई सुनने के बाद? आप जब श्रद्धा सुन सुन करके उनका विषय में विशेष ज्ञान हुआ तब आप उनके पास गए। और रावण के पास क्यों नहीं जाते? कंस के पास क्यों नहीं जाते? उसका शरण क्यों लेते नहीं हम? राम के रावण के पास अथवा कंस के पास, शिशुपाल के पास, दुर्योधन के पास क्यों नहीं जाते? क्या उनका उनका दुर्गुण, हम दुर्गुण के विषय में, उसके दोष के विषय में हमारे अंदर संस्कार है, इसका गुण, उसका स्वभाव, उनका कृति अच्छा नहीं है, तो हम उसके पास जाते नहीं, तो उसको त्याग देते। उसका नाम सुनने गए, उस मंदिर में मत जाना, वहां रावण बैठा है, वहां भूत बैठा है। क्यों? उसके विषय में हमारे मन में संस्कार खराब पड़ा है, बुरा संस्कार पड़ा है, इसीलिए नहीं जाते। उनके विषय में अच्छा संस्कार पड़ा है, इसीलिए जाते। तो किसी व्यक्ति का, किसी वस्तु का, किसी भी स्थान का, किसी पदार्थ का, दोष गुण का जब ज्ञान होता है ना हमारे, तब हम उनके पास जाते हैं अथवा उनसे दूर होते हैं। ऐसे रामकृष्ण के विषय में हम सुने, देखा तो नहीं रामकृष्ण को, न राम को देखा, कृष्ण को देखा, फिर भी शास्त्र श्रवण करते 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 महापुरुष से सुनते सुनते हमारे मन में संस्कार बढ़ गया। तो विवेक जगाने के लिए क्या करना पड़ता है? श्रवण करना पड़ता है। अब विवेक हुआ तो उनके विषय में दोष बुद्धि हुई, इनके विषय में गुण बुद्धि हुई। तो जहां गुण बुद्धि होगी वहां हम जाएंगे, दोष बुद्धि होगा उसको हम छोड़ेंगे। तो जहां छोड़ेंगे वहां वैराग्य है, जहां पकड़ेंगे वहां राग है। आनी बात, तो राग देश का मुख्य कारण क्या है? गुण बुद्धि और दोष बुद्धि। अभी समझो, एक तरफ एक रस्सी पड़ी है, एक तरफ सुक्ति पड़ी है, दो तरफ दो वस्तु पड़ी है, मंद अंधकार भी हो, हमको सुक्ति में चांदी बुद्धि हो गई, रस्सी में सर्व बुद्धि हो गई एक आदमी को। अब रस्सी में जब सर्प बुद्धि हो गई, उसको मारने के लिए दौड़ा, और जिसको सुक्ति में चांदी बुद्धि हो उसको उठाने के लिए दौड़ा। हाँ, सुक्ति में चांदी बुद्धि हो गई तो उठाने दौड़ा। क्यों? सुक्ति में चांदी बुद्धि हो गई, राग है, और सर्प को मारने के लिए दौड़ा, द्वेष बुद्धि हो गई। और जब सर्प मारते मारते सुबह हो गया तो देखा सूर्य उदय हुआ, लाइट आई, अरे राम राम, क्या मारा, ऐ तो सर्प तो है नहीं, रस्सी पड़ी है। और उसने जो चांदी उठाया, देखा अरे क्या है, अरे तो सीपी है, चांदी नहीं है। तो दोनों ने दोनों को हटा दिया, फेंक दिया। हाँ, जिसको चांदी बुद्धि हुई, क्यों? उसमें राग हो गया। चांदी बुद्धि होने से हम उसको उठाने गया, क्यों? राग है, चांदी के प्रति राग है। और सर्प को मारने दौड़ा इसीलिए कि उसके प्रति हमारा द्वेष है, सर्प काटेगा मरेंगे, जहर चढ़ेगा। तो ये जो राग द्वेष का कारण क्या हुआ? सत्यता बुद्धि। राग द्वेष का कारण क्या हुआ? सत्यता बुद्धि। सुक्ति चांदी भी सत्य है और सर्प भी सत्य है। सर्प का सत्य नहीं अगर नहीं समझे तो मारने नहीं जाते, चांदी का सत्य नहीं समझते तो उठाने नहीं जाते। तो चांदी भी सत्य है, सर्प भी कभी मारने और उठाने गया। अब जब हमने देखा ये चांदी नहीं है, सर्प नहीं है, तो रस्सी में द्वेष होगा,